एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
लेके प्यार यीशु तू है वहाँ, तेरी जय तेरी जय।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा स्तुति धन्यवाद करते हैं। हमारे मनों को खोल दे पिता जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें विशेष रूप से तेरे संवाद के द्वारा आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है हमारा अनंत घर। बाइबल स्पष्ट करती है कि अंतत बचाए गए लोग इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। मत्ती 5:5, भजन संहिता 37:9-39 और भजन संहिता 119:16 देखें। यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए अपने पिता के घर में रहने के स्थान तैयार करने की प्रतिज्ञा की थी, यूहन्ना 14:1-3। जैसा कि हमने देखा है, पवित्र शास्त्र नए यरूशलेम में पिता के सिंहासन और स्वर्गीय मुख्यालय का पता बताता है जो इस पृथ्वी पर उतरेगा। प्रकाशित वाक्य 21:2-5 नगर का घर होगा। नया यरूशलेम वह नगर है जिसकी इब्राहिम पाठ जोहता था। इब्रानियों 11:10 उस विशाल नगर के भीतर मसीह घर तैयार कर रहा है। यूहन्ना 14:2 या जैसा कि मूल शब्द इंगित करता है, रहने का जगह, वास्तविक घर, ग्रामीण घर भी होगा, परंतु छुड़ाए गए लोग नए यरूशलेम की शहरपना के भीतर सीमित नहीं रहेंगे। वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अपने नगर के घरों से छुड़ाए गए लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सपनों के घर की रूपरेखा तैयार करने और निर्माण करने, फसल बोने, काटने और खाने के लिए निकलेंगे, कहता है यशाया 65:21। घर पर परमेश्वर एवं मसीह के साथ होंगे। यीशु ने अपने चेलों से जो प्रतिज्ञा की थी, वह नई पृथ्वी पर हमेशा के लिए पूरी होगी कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, यूहन्ना 14:3। अवतरण का उद्देश्य, परमेश्वर हमारे साथ अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रकाशित वाक्य 21:3। यहाँ बचाए गए लोगों को पिता एवं पुत्र की उपस्थिति में रहने का व उनके साथ संगति करने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। नई पृथ्वी में जीवन किस प्रकार का होगा, आइए हम इसके विषय में आगे देखें। परमेश्वर एवं मसीह के साथ शासन करना। परमेश्वर एवं मसीह के साथ बचाए गए लोग शासन करेंगे। परमेश्वर छुड़ाए हुओं को अपने राज्य के मामलों में शामिल करेगा। परमेश्वर एवं मेमने का सिंहासन इस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3-5 कहता है और इसका हम तुलना प्रकाशित वाक्य 5:10 से कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि उसके शासन की सीमा क्या है, फिर भी हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि राज्य में अपनी भूमिका के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में छुटकारा पाए हुए लोग ब्राह्मण में मसीह के राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, जो परमेश्वर के प्रेम के अपने अनुभव की गवाही देंगे। उनका सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर की महिमा करना होगा। नई पृथ्वी में शारीरिक गतिविधियाँ कैसी होंगी? नई पृथ्वी में जीवन अनंत काल के लिए अति महत्वाकांक्षी लोगों के लिए चुनौती देगा। वहाँ छुड़ाए गए लोगों के लिए उपलब्ध गतिविधियों के श्रेणियों की झलक हमारी इच्छा को बढ़ा देगी, लेकिन संभावना को सीमित करना शुरू भी ना होगा। हम पहले ही पवित्र शास्त्र की प्रतिज्ञाओं को देख चुके हैं कि छुड़ाए गए लोग घर बनाकर उसमें बसेंगे। यशायाह 65:21। घर बनाने का तात्पर्य रूपरेखा निर्माण, साज सज्जा या फिर से बनाने या पुनर्निर्माण करने की क्षमता से है और बसने शब्द से हम दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों की संपूर्ण विस्तृत श्रेणी का अनुभव लगा सकते हैं। संपूर्ण नई पृथ्वी के अस्तित्व का उद्देश्य, परमेश्वर ने अपनी प्रारंभिक सृष्टि के लिए जो योजना बनाई थी उसकी पुनर्स्थापना है। अदन में परमेश्वर ने प्रथम मानव प्राणियों को एक बगीचा दिया ताकि उसमें वे काम करें एवं उसकी रक्षा करें। उत्पत्ति 2:15। जैसा यशायाह ने कहा, यदि वे नई पृथ्वी में दाख की बारियां लगाएंगे तो बाग और अनाज के खेत क्यों नहीं? यदि जैसा प्रकाशित वाक्य इंगित करता है वे बिना बजाएंगे तो तुरियां और अन्य वाद्य यंत्र क्यों नहीं बजाएंगे? आखिरकार यह स्वयं ईश्वर ही था जिसने मानवता में रचनात्मक प्रेरणा को प्रत्यारोपित किया और उन्हें असीमित क्षमता वाले संसार में रखा। उत्पत्ति 1:28-31। नई पृथ्वी में सामाजिक जीवन कैसा होगा? हम अनंत काल में संबंधों का भरपूर आनंद उठाएंगे। पहला, मित्रगण एवं परिवार। गौरवान्वित होने के बाद, यीशु के स्वरूप में परिवर्तित होने के बाद, क्या तब हम अपने मित्रों व परिवार को पहचानेंगे? मसीह के पुनर्स्थान के पश्चात उसके शिष्यों को उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मरियम ने उसकी आवाज़ को यूहन्ना 20:11-16, थोमा ने उसकी शारीरिक बनावट को यूहन्ना 20:27-28 एवं इम्माऊस से उसके शिष्यों ने उसके व्यवहार को लूका 24:30-35 पहचाना था। उन्होंने उसे इस तरह पहचान लिया था। स्वर्ग के राज्य में इब्राहिम, इसहाक एवं याकूब अभी भी अपने व्यक्तिगत नाम और पहचान धारण करते हैं। मत्ती 8:11। हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि नई पृथ्वी पर हम उन लोगों के साथ अपने संबंध जारी रखेंगे जिन्हें हम अभी जानते हैं और प्रेम करते हैं। वास्तव में यह रिश्ते ही हैं जिनका हम वहां आनंद लेंगे, ना कि केवल परिवार और वर्तमान दोस्तों के साथ जो स्वर्ग को हमारी आशा बनाते हैं। इस पृथ्वी के अनेक भौतिक लाभ पिता परमेश्वर के साथ, हमारे उद्धारकर्ता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, हर एक जाति और कुल और भाषा और प्रजा के पवित्र लोगों के साथ और हमारे परिवारों के साथ संबंधों के शाश्वत मूल्यों की तुलना में कुछ भी प्रतीत नहीं होंगे। फिर कोई ध्वस्त व्यक्तित्व, खंडित परिवार या भंग सहभागिता ना होगी। संपूर्णता या स्वस्थता विश्वव्यापी होगी। शारीरिक व मानसिक एकीकरण स्वर्ग एवं अनंतकाल को पूर्ण पूर्ति बना देगा। प्रेम और सहानुभूति जो परमेश्वर ने स्वयं आत्मा में बोई है वह वास्तविक एवं मधुरतम अभ्यास पाएंगे। पवित्र प्राणियों के साथ शुद्ध वार्तालाप, अन्य स्वर्गदूतों एवं हर उम्र के ईमानदार लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सामाजिक जीवन, ये सब मिलकर छुड़ाए गए लोगों के आनंद को बनाने में सहायक होंगे। दूसरा हम देखेंगे विवाह का क्या। मसीह के कुछ समकालीनों ने बार बार विधवा होने वाली एक महिला जिसके कुल 7 पति थे के विषय का वर्णन किया। उन्होंने मसीह से पूछा कि पुनरुत्थान के पश्चात वह किसकी पत्नी होगी। यदि इस पृथ्वी के विवाह संबंधों को स्वर्ग में नवीकृत किया जाता है तो उन अंतहीन जटिलताओं को देखने के लिए जो पेश की जाएंगी बहुत कम कल्पना की आवश्यकता होगी। मसीह का उत्तर दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है। जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। मत्ती 22:29-30। तो क्या छुड़ाए गए लोग अब शादी से जुड़े लाभों से वंचित रह जाएंगे? नई पृथ्वी छुड़ाए गए लोग किसी भी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। भजन संहिता 84:11। यदि इस जीवन में यह सच है तो अगले जीवन में और कितना अधिक सच होगा। विवाह का सार प्रेम है। आनंद का प्रतीक प्रेम की अभिव्यक्ति में है। शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रेम है, क्यों तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। 1 यूहन्ना 4:8, भजन संहिता 16:11। नई पृथ्वी में किसी को प्रेम या आनंद या सुख की कमी ना होगी। वहां कोई भी स्वयं को अकेला, खोखला या प्रेम रहित महसूस ना करेगा। हम विश्वास कर सकते हैं कि वह प्रेमी सृष्टिकर्ता जिसने इस वर्तमान संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए विवाह को रचा, आने वाले संसार में इससे कुछ और बेहतर ही होगा। कुछ ऐसा जो विवाह से उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना कि इस दुनिया की तुलना में नई दुनिया। नई पृथ्वी में बौद्धिक जीवन कैसा होगा? मानसिक बहाली। उस जीवन के पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रकाशित वाक्य 22:2। प्रकाशित वाक्य जिस चंगाई के विषय में कह रहा है वह इलाज से अधिक है। इसका अर्थ बहाली है, क्योंकि वहां कोई भी कभी अस्वस्थ नहीं होगा। यशायाह 33:24-20। जब वे जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे तो छुड़ाए गए लोग उस शारीरिक व मानसिक बौनापन को जो सदियों के पाप के कारण हुआ है पीछे छोड़ देंगे। वे परमेश्वर के स्वरूप में पुनर्स्थापित किए जाएंगे। असीमित क्षमता होगी। अनंतकाल असीमित बौद्धिक क्षितिज प्रदान करता है। नई पृथ्वी में अविनाशी बुद्धि, रचनात्मक शक्ति के चमत्कारों पर, छुटकारा दिलाने वाले प्रेम के रहस्यों पर अनंत आनंद के साथ चिंतन करेगी। कोई क्रूर धोखा देने वाला शत्रु नहीं होगा जो परमेश्वर को भुला देने का प्रलोभन दे। प्रत्येक शक्ति का विकास होगा, प्रत्येक क्षमता की वृद्धि होगी। ज्ञान की प्राप्ति से ना तो मन थकेगा और ना ही ऊर्जा समाप्त होगी। वहाँ सर्वोच्च उपक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा, उत्कृष्ट महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकेगा, उच्चतम अभिलाषाओं को प्राप्त किया जा सकेगा, और फिर भी जीतने के लिए नई ऊंचाइयां होंगी, सराहने के लिए नए आश्चर्य, समझने के लिए नए सत्य, मन आत्मा व शरीर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए नई वस्तुएं होंगी। नई पृथ्वी में आत्मिक खोज मसीह से अलग अनंत जीवन अर्थहीन होगा। अनंत काल तक छुटकारा पाने वाले लोग हमेशा यीशु को अधिक जानने के लिए भूखे व प्यासे रहेंगे, उसके जीवन व कार्य की अधिक समझ के लिए, उसके साथ और अधिक जुड़े रहने के लिए, उसके अतुलनीय प्रेम के बारे में अपतित दुनिया को अधिक समय तक गवाही देने के लिए, एक ऐसे चरित्र के लिए जो उसे अधिक निकटता से प्रतिबिंबित करता हो, छुड़ाए गए मसीह के लिए एवं उसके साथ रहेंगे। वे पूर्ण संतुष्टि के साथ हमेशा के लिए उसमें विश्राम करेंगे। मसीह स्वयं सेवा करने के लिए जीवित रहा, मत्ती 20 का 28, और उनके अपने अनुयायियों को उसी जीवन के लिए बुलाया। हालांकि छुड़ाए गए लोगों के पास परमेश्वर की प्रकृति के खजाने की छानबीन करने का अवसर होगा, क्रूस का विज्ञान ही सबसे लोकप्रिय विज्ञान होगा। सप्ताह दर सप्ताह बचाए गए लोग शब्द की आराधना के लिए एकत्रित होंगे, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वाणी है। हम इसे पढ़ते हैं यशाया 66 का 23 में। क्या आप उस दुनिया, नई दुनिया स्वर्ग में होना चाहते हैं? क्या आप अपने मित्रों के साथ वहाँ होना चाहते हैं? क्या आप उस समय के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वह जल्दी आए? मैं तो उस स्थान में, उस जगह में, उस राज्य में होना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं निमंत्रण करता हूँ आप भी वहाँ आइए, यह इच्छा रखिए, और दूसरों को भी बुलाइए कि वे यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ खुशी से अनंत काल बिताएंगे। कितना ही भला और आनंद का समय होगा। आइए हम उस दिन के लिए तैयार हो, उस दिन का बाढ़ जो है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मदद करे उसके लिए तैयार होने के लिए। परमेश्वर अपना आत्मा हमें दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञा दिया कि हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है स्वर्ग में, हमें उस जगह ले जाना चाहता है। हमें तो जब इस जगत में हैं, हमारे मनों को तैयार कर, तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, हमें शुद्ध और पवित्र कर, तेरा धार्मिकता दे कि हम तेरे संग अनंत काल तक उस राज में होने सके। मैं हरेक श्रोताओं को आशीष दे पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
करते हैं तो
को प्रणाम। राजाओं का राजा,
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।